नमस्कार दोस्तों, छिंदवाड़ा वाले से आपका दोस्त योगेश। पंथ निरपेक्ष एवं समाजवाद शब्दों को हटाना भूल या मंशा, संसद के सदस्यों को बढ़ाई गई उत्पत्तियों को जो शब्द हटाए गए उनका महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि वर्तमान में जो सत्ता है उनकी और उनके वैचारिक संगठन में को हमेशा से इन शब्दों से बैन रहा है। इसका कारण कि वे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उनके इस विचार के फलीभूत होने में यह शब्द गाहे बघाए आते रहते हैं। आज हमारे साथ एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ सर जुड़े हैं। गायकवाड़ सर, मोबाइल लेने पर स्वागत है आपका।
नमस्कार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक महत्वपूर्ण विषय जो संविधान की संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ है, तो आपकी इस परिचर्चा के लिए मुझे मंच देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जी सर,
जी
बोलिए।
सर, सर क्या देखते हैं कि पंथ निरपेक्षता और समाजवाद की जो संविधान में अवधारणाएं हैं उसकी आधारशिला है, उसको किस तरीके से देखते हैं सर, और क्या इसकी आवश्यकता है जान पड़ती है सर?
देखिए, जब पहली बार संविधान मतलब हमारा जो संविधान है वो
जी
26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो उस समय हमारी जो प्रस्तावना है
जी
उस प्रस्तावना में न तो समाजवाद था, ना ही पंथ निरपेक्षता थी, ना ही अखंडता थी। संविधान में पहली बार 1976 में संशोधन करके ये शब्द जोड़े गए। और आपको मैं बता दूं कि संविधान में अब तक केवल एक ही बार संशोधन हुआ, वो हुआ था 1976 में, तब ये
जी
तीन शब्द जुड़े गए थे। तो
जी
इसके पीछे की जो मंशा थी कि हमारा जो मैं पंथ निरपेक्षता की बात करूं तो हमारे संविधान का जो आर्टिकल है 25 से 28 वो
जी
धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है, और 29 से जो 30 है वो शिक्षा व संस्कृति मतलब हमारे देश में जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनको अपनी शिक्षा व संस्कृति का प्रचार प्रसार का अधिकार दिया गया। अब ये अधिकार क्यों दिया गया 29 और 30 वाला, उसके पीछे का कि यहाँ बहुसंख्यक वर्ग हिंदू है और संविधानिक व्यवस्था के हिसाब से देखें तो उनका दायित्व तो बनता है कि वो अपने अधीन जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हितों की रक्षा करें। तो उनके हितों की रक्षा के लिए आर्टिकल 29 और 30 में ये प्रावधान है, और उसके तहत हम लोग एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण कर चुके हैं जहाँ पे किसी व्यक्तिगत धर्म हो सकता है, किसी का व्यक्तिगत उपासना कर सकता है, लेकिन जब सार्वजनिकता की बात आती है तो वहां सार्वजनिकता में भारत का कोई धर्म नहीं है, क्योंकि जो पंथ निरपेक्षता का शब्द ही यही लिखा गया कि यहाँ कोई ऐसा धर्म जाति मतलब धर्म की अवधारणा नहीं है। ये एक बहुदलीय बहु धर्म का देश है और बहु जातीय का देश है, यहाँ सभी वर्ग के लोग रहते, तो उनके बीच में समन्वय तालमेल बैठे बहुत अच्छे से, इसलिए इस राष्ट्र का कोई ऐसा धर्म नहीं रखा गया, इसलिए वो शब्द जोड़ा गया। रही बात समाजवाद की, तो यहाँ पे जो व्यवस्था थी सरकारी नियंत्रण की वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से अभी जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है वहां की स्थिति में ये शब्द जो है ना वो मतलब ये जो शब्द है इसके महत्ता की कमीता को दर्शा रहा है। और धर्म की बात करें तो अभी आने वाला जो समय जिस तरीके से भारत में धार्मिक सहिष्णुता के बीच जो एक दुराव मतलब एक तरह का अंतर पड़ रहा है, तो उस अंतर की वजह से जनमानस में अपने एक धर्म के प्रति मतलब इसको कहेंगे कि धर्म के प्रति जो निष्ठा का भाव जो निर्मित हो रहा है, तो वहां पे जनमत जो है वर्ग विशेष की तरफ आकर्षित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये स्थितियां मुझे लगता है कि निर्मित हो रही है। लेकिन पर ये जो शब्द आप कह रहे कि संसद के गठन होने के बाद जो प्रपत्र उनको दिया गया उसमें ये तीन शब्द नहीं थे, अब ये एक अलग मंशा है कि क्यों नहीं दिए गए, उनकी मंशा क्या है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में मतलब संशोधन करना इतना आसान नहीं है, उसके लिए पूरा पूरी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के तहत ही होता है, क्योंकि अभी तक केवल प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ था 1976 में। जी बोलिए सर।
जी सर, सर मेरा इसी को लेकर है कि क्या सर इन शब्दों को हटाने के क्या कारण देखते हैं आप, और समाज में इसके क्या परिणाम सामने आएंगे सर?
देखिए, इसके पीछे की जो मंशा है,
जी सर,
मैंने एक बात अभी सुनी थी कि भगवान और सरकार कुछ भी कर सकते हैं, जिनका भगवान हो, सरकार कुछ भी कर सकते, और सरकार मतलब जनता द्वारा निर्मित व्यवस्था है। अब इसके पीछे की मंशा सामान्यतः हम समझ नहीं सकते, लेकिन बात ये कर सकते हैं कि एक ऐसी राजनीतिक इच्छा शक्ति समाज के पृष्ठभूमि में अपनी पृष्ठभूमि को आरोपित करने के लिए हो सकता है कि, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने एक बात कही थी, धर्म जो है अफीम है, आप अफीम का चस्का लगा दीजिए तो धर्म में बड़ा आगाज होता है, लेकिन उसके पीछे की तर्कशीलता कम है। देखिए यूरोप में जब धर्म का प्रभाव बढ़ा था तो वैज्ञानिकता का दृष्टिकोण निर्मित हो गया, वहां धर्म की जो महत्ता के लोग थे उनके साथ शासन ने इस तरह से व्यवहार किया कि एक आम आदमी की तरह आपको भी सब चीजों में भागीदार होकर आपकी महत्ता को खत्म किया जाएगा। हमारे यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से भारत सरकार प्रयास कर रही है, अब ये एक ऐसा संवेदनशील विषय हो गया धर्म का, कि जहां पे भी आप ऐसी कोई बात करते तो पूरे मतलब व्यवस्था उठ के आती है। अभी देखिए पिछले बार भगवदगीता को जब राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ घोषित करने की बात आई तो बड़ी दिक्कतें आ गई, क्योंकि हम बहुधर्मी लोग हैं, बहुधर्मी व्यवस्था में समन्वय बिठाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें होने से एक पक्ष तो अच्छा खुश हो जाएगा, मतलब वो मतलब मानेगा कि नहीं सही निर्णय, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि एक ऐसा बड़ा अल्पसंख्यक, क्योंकि भारत में 6 प्रकार के अल्पसंख्यक वर्ग है, लोग हैं, और उनकी जो गतिविधियां हैं वो फिर कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, वो अपना आवाज उठाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में ये जो चुनाव होने वाला है, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ जो भी गतिविधियां होती है, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, MP की बात करें, चाहे भारत सरकार की बात करें, उसमें कहीं ना कहीं वर्ग विशेष के लोगों को प्रभावित करने का एक तरीका है, क्योंकि सत्ता महत्वपूर्ण हो गई है, शासन में सत्ता बहुत महत्वपूर्ण हो गई, सत्ता की ताकत का खेल खेलने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। जी
सर, पंथ निरपेक्षता एवं समाजवाद को जोड़ने के पीछे क्या कारण नजर आ रहे थे उस समय के काल में सर?
संविधान लागू होने के 26 साल बाद ये चीजें हुई थी। संविधान लागू होने के 26 साल बाद हमारे प्रस्तावना में जोड़े गए थे, और प्रस्तावना में जिन शब्दों को इंगित किया जाता है वो हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य होते, ये आपको जानकारी होनी चाहिए, ये हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य होते, मतलब सरकार जो है इन लक्ष्यों को सामने रखते अपनी कानूनी व्यवस्था, क्योंकि जो भी बातें लिखी गई है, हम भारत के लोग जो शब्द वहां से जहां से शुरू होता है, तो हम भारत के लोग मतलब किसी के व्यक्ति धर्म जाति के लोगों की बात नहीं की गई है, ये जो शब्द हमने अमरीका से लिया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल, ये एक्चुअली सार्वभौमिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। तो जब सार्वभौमिक दृष्टिकोण भारत के संविधान में निहित है, तो उस स्थिति में ये जो शब्द गढ़ा गया, पंथ निरपेक्ष, पहले तो धर्म निरपेक्ष था उसको फिर पंथ निरपेक्ष किया गया, तो ये गढ़ने के पीछे की ये मंशा है कि हम जो है कोई एक व्यक्ति नहीं है, हम संपूर्ण भारत की बात करते हैं, संपूर्ण भारत के समाज की बात करते हैं, संपूर्ण भारत की धार्मिकता की बात करते हैं, ये वाली चीज। और भारत में जो धर्म को जो है ना कर्तव्य के रूप में दिया गया, क्योंकि मुझे याद है गोधरा कांड जब हुआ था, नरेंद्र मोदी जी वहां शायद मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था एक बहुत निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से एक बहुत अच्छी बात की थी, कि ऐसे बहुत कम राजनेता जो इस तरह की बात करते, उन्होंने कहा था कि आपको अपने राज धर्म का पालन करना चाहिए, आपको अपने राज जो धार्मिक जो धर्म का मतलब उन्होंने कर्तव्य के रूप में लिया था, तो आज जो है हमको इसको कर्तव्य के रूप में लेना चाहिए, हमारे हम कर्तव्य भूल रहे, अधिकारों की बात करते जबकि संविधान में केवल 6 अधिकार है, लेकिन कर्तव्य की बात करें तो 11 कर्तव्य है, और उस 11 कर्तव्य में हमको अपनी जो व्यवस्था है उसका सम्मान करने का बहुत बड़ा एक दायित्व दिया गया है, और वो सम्मान हम लोग निभाते, समाज का एक बड़ा वर्ग उसको निभाते, लेकिन समाज में एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था भी निर्मित हो रही है कि वो केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सारी साधनाएं, सारी उपासनाएं, सारी प्रार्थनाएं करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कहीं ना कहीं राजनीतिक हथकंडा हो सकता है आने वाले चुनाव के लिए, वर्ग विशेष को प्रभावित करने के लिए, क्योंकि आजकल जिस तरह की राजनीति मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, देश में हो रही है, तो उसमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक ब्रह्मास्त्र यूज करने का प्रयास हो रहा है आने वाले चुनाव को। जी
सर। सर क्या देश में इन दोनों शब्दों को हटाकर क्या हिंदू राष्ट्र बनाना संभव है?
नहीं, ये एक अपनी एक अवधारणा हो सकती है देश की, लेकिन हिंदू राष्ट्र के साथ साथ व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्तित्व के हिंदुत्ववादी जो दृष्टिकोण, हिंदुत्ववादी जैसे विवेकानंद जी जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने हिंदुत्व के जब भाषण दिया और जब उन्होंने अपनी बात रखी तो उन्होंने कहा हिंदुत्व या हिंदू जो है एक प्रकार की जीवन शैली है, हमको सबसे पहले राष्ट्र बनाने के पहले उस तरह की जीवन शैली, उस तरह की वैचारिक संस्कृति का और उस तरह की एक सामाजिक समझ का निर्माण करने की मुझे लगता है सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे यहाँ पे व्यवस्था निर्मित हो रही है वहां पे कहीं ना कहीं हमारी सहिष्णुता जो थी, जिस भारत की जो पहचान थी धार्मिक सहिष्णुता स्नेह, वो खत्म हो रही है। तो यदि आपके राष्ट्र बनाने से यदि इस तरह की व्यवस्था निर्मित होती तो मुझे लगता है कि फिर उसके ऊपर चिंतन की आवश्यकता है। जी
सर, क्या भारत की जिस प्रस्तावना में इन दो महत्वपूर्ण शब्दों का समावेश किया गया है, सर इन दो शब्दों का उपयोग नहीं किया गया था तो भारत की जो प्रस्तावना है उन दो शब्दों को छोड़ दिया जाए तो क्या आपको महसूस होता है, और प्रस्तावनाओं की इस महत्वपूर्ण बिंदु पर किस तरीके की प्रस्तावना आप देखते हैं?
नहीं देखिए, ये जो शब्द है ये हमारी सार्वभौमिकता को, मैं बार बार एक चीज आपको बोल रहा हूँ, ये हमारी सार्वभौमिकता है। ये मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ पे एक बड़ा वर्ग जो हिंदू वर्ग है उनका मतलब संविधान ने एक दायित्व निर्धारण किया है कि हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने अधीनस्थ जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हितों की रक्षा करें। ये हमारी संविधानिक व्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है साहब, और उस स्थिति में हम सभी के धर्मों का स्वतंत्रता को बनाए रखना है, हमको अपने धर्म का भी पालन करना है, दूसरों के धर्म की भी अवहेलना न हो, और धर्मनिष्ठा की जो भावना है वो अपनी व्यक्तिगत स्तर पर है। जैसे सम्राट अशोक का व्यक्तिगत धर्म शैव था लेकिन सार्वजनिक उसका धर्म बौद्ध धर्म था। तो ये वाली जो बात है, क्योंकि हमारी संस्कृति का स्वरूप ही वैसा है, यहाँ पे बहुत जातियां, बहुत धर्म, बहु विचारधारा, बहु संस्कृति के लोग हैं, तो ऐसी स्थिति में हमको समन्वय बिठाने के लिए ये जो शब्द है ये बहुत उचित शब्द था। लेकिन आज की सरकार की मंशा को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसके पीछे जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना की जा रही है वो साकार स्वरूप में बिल्कुल सुनिश्चित है, बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुत्व शब्द के पीछे की जो मूल पृष्ठभूमि है वो सबसे पहले जनमानस के बीच में आनी चाहिए। तो इस तरह की भी कल्पना साकार स्वरूप में होती है तो ये शब्द का अपना महत्व बढ़ जाएगा, और हम लोग दुनिया के सामने एक विश्व गुरु के रूप में और एक हिंदू राष्ट्र के रूप में उभर कर आएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें हिंदुत्व का जो स्वरूप है वो जनमानस के बीच में स्थापित करना होगा, और तभी हम अपने इस देश में सक्सेस हो सकते, सफल हो सकते। लेकिन हाँ, प्रस्तावना में परिवर्तन लाने के लिए संसद की पूर्णता की आवश्यकता होती है, सहमति की आवश्यकता होती है, और प्रस्तावना में संशोधन लाना मतलब एक प्रकार की न्यायिक लड़ाई का सबसे बड़ा स्वरूप उभर कर आ जाएगा इससे। जी,
तो ये थे एडवोकेट मधुकर गायकवाड़ सर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर पंथ निरपेक्ष एवं समाजवादी शब्द को हटाना भूल या मंचा इस विषय पर मोबाइल वाणी पर अपने विचार साझा किए। मधुकर सर, मोबाइल वाणी को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
जी जी, धन्यवाद साहब, नमस्कार
जी। छिंदवाड़ा वाले सबका दोस्त योगेश, धन्यवाद।